के गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। संसार परमागम है, इसके तीन महाअधिकार हैं, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार और चरणानुयोग सूचक चूलिका। इन तीनों अधिकारों में जैसे आचार्य के अनुसार क्रमशः सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का वर्णन है। ये तो एक कॉमन कथन हुआ, लेकिन सम्यक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में पहले शुद्धोपयोग का वर्णन, उसके बाद शुद्धोपयोग से प्राप्त होने वाले अनंत ज्ञान और अनंत सुख इसका वर्णन, जिसमें अनंत ज्ञान में सर्वज्ञता और अनंत सुख में जो वास्तविक सुख है आत्मा से उत्पन्न होने वाला, उसकी चर्चा है विस्तार से। और इसके बाद ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार शुरू होता है। ज्ञेय माने सारा जगत, जो भी पदार्थ जानने में आता है, ज्ञान का विषय बनते हैं, वे सब ज्ञेय हैं। और जितने पदार्थ हैं वे सभी ज्ञान का विषय बनते हैं, इसलिए सभी ज्ञेय हैं। यानी ऐसा कोई भी नहीं है कि जो ज्ञेय ना हो, जो जाना ना जा सकता हो, जिसे जानना संभव ना हो, जिसे कोई ना कोई जानता ना हो। ये एक बड़ा प्रकरण है जो हमारे न्याय शास्त्र में बहुत विस्तार से इसकी चर्चा है कि ये जगत जाना जा सकता है कि नहीं, जाना जा सकता है तो कैसे जाना जा सकता है, कौन जानता है। और उसमें फिर बहुत विवाद खड़े हो गए। हम कहते हैं महावीर जानते हैं, कोई कहता बुद्ध जानते हैं, कोई कहता सांख्य जानते हैं। तो कोई इस तरह से सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि माने सारी दुनिया जानी जा सकती है इस बात को सिद्ध करना। कौन जानता है इसका भी कोई सवाल नहीं है, वो जानी जा सकती है कि नहीं। और फिर विशेष सर्वज्ञ सिद्धि कि जानता है तो कौन जानता है और कौन नहीं जानता है। तो ये दोनों का वर्णन बहुत विस्तार से न्याय शास्त्र में है। अभी अपना जो प्रकरण चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत तीन अधिकार हैं, एक द्रव्य सामान्य अधिकार और एक द्रव्य विशेष अधिकार और तीसरा ज्ञान ज्ञेय व्यवहार अधिकार। इन दो अधिकारों में द्रव्य सामान्य अधिकार सबसे कठिन विषय है और द्रव्य विशेष अधिकार सबसे सरल विषय है। आप कहें ऐसा क्यों? वो कठिन विषय पहले बता दिया और फिर बाद में बता रहे, ये तो इनके सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि पहले होती है फिर बाद में विशेष सर्वज्ञ सिद्धि होती है। भगवान महावीर सर्वज्ञ हैं कि नहीं है, कहते पहले तो ये सिद्ध करो ना कि सर्वज्ञ कोई हो सकता है कि होता है कि नहीं है। ये सिद्ध किए बिना है ना नहीं हम सिद्ध कर सकते। तो सामान्य स्वरूप सब कठिन क्यों है? कि उसमें जो वस्तु का स्वभाव उत्पाद व द्रव्य है और जो विशेषताएं हैं उसमें मूल स्वभाव, एक वस्तु का नहीं सारी वस्तुओं का, जो चीज कॉमन है सब में उसका वर्णन करना, वो द्रव्य सामान्य अधिकार में है। और फिर उनके विशेष हर एक द्रव्य की चर्चा करना, तो हर एक द्रव्य की जो चर्चा है, द्रव्य छह हैं, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, फिर जीव में क्या विशेषताएं हैं, पुद्गल में क्या है, धर्म में क्या है, अधर्म में क्या है, ये सब बातें बताना, ये हमारे लिए सरल क्यों हो गया? इसलिए सरल हो गया कि छह डाला में है, द्रव्य संग्रह में है, यानी हम कई जगह उसे पढ़ के आए हैं। भागवत पाठमालाओं में छह द्रव्य का पाठ है ना, वहां द्रव्य के सामान्य स्वरूप तो नहीं बताया, इसलिए वो कठिन है। अपरिचित होता है बस वो कठिन, परिचित हो गया वो सरल। कठिन और सरलता का विशेष अर्थ क्या है, यही तो है। तो वो कहते हैं कि अभी वही हम पढ़ के आए सब जगह, सब बच्चे बच्चे को याद है, माताएं बहनों को पता है सब, तो वो जो भी कहेंगे वो सरल लगेगा। तो ये अपना प्रकरण चल रहा है। अभी इस पंचाष्टी काल में भी यही है, लेकिन ये प्रवचन सार के द्रव्य विशेष अधिकार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनने द्रव्यों के छह भेद किए, छह माने छह प्रकार की, छह नहीं, द्रव्य तो अनंत हैं, लेकिन उनमें छह प्रकार के हैं। तो उन्हें समझाने के लिए जीव और अजीव ऐसे भेद किए, माने एक तरफ रखा एक और दूसरी तरफ रखा बाकी के सब। तो जीव फिर अजीब, तो जीव के भेद बताए, अजीब के भेद बताए, फिर तो उसका बहुत लंबा विषय हो सकता है, वो इसमें नहीं है। उमर साहब जीव कांड ने पूरा जीव के बारे में लिखा हुआ है। अजीब में अकेला एक कर्म एक पार्ट है, उसके बारे में पूरा कर्म कांड लिखा हुआ है। मतलब विस्तार की गुंजाइश तो बहुत है, लेकिन उन्होंने अत्यंत संक्षेप में इसके जीव और अजीब ऐसे दो भेद किए। अब यही पद्धति उन्होंने छह द्रव्यों में घटित करी है, जीव अजीब, तो पुद्गल और अपुद्गल। अपुद्गल तो आया नहीं, तो इनने उसके लिए नाम दिया मूर्ति और अमूर्ति, कि पुद्गल मूर्ति है और बाकी के पांच द्रव्य अमूर्ति। एक तरफ रखा एक द्रव्य, दूसरी तरफ उसके बदले में रखे बाकी के पांच। तो एक भेद किया जीव अजीब, तो अजीब हो गए पांच। फिर दूसरा भेद किया मूर्ति का मूर्ति, तो पुद्गल मूर्ति पुद्गल हो गया एक और बाकी के हो गए पांच। फिर ऐसे ही भेद हरेक में किए, जैसे आकाश और अनाकाश। पता लगता है ना कुछ अपन को, भाई एक द्रव्य आकाश और बाकी के पांच द्रव्य भी आकाश नहीं है, उन्हें ऐसे ही नाम कुछ देना पड़ेगा ना, जो भी इसमें दिया है। फिर धर्म द्रव्य में, फिर अधर्म द्रव्य में, फिर काल द्रव्य में। तो पंचाष्टी काय पूरा काल द्रव्य को मुख्य करके, मैंने काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है और बाकी के पांच द्रव्य अस्थिकाय हैं। किताब का ही नाम पंचाष्टी काय रख दिया, माने पंचाष्टी काय में की चर्चा जहां चली तहां काल द्रव्य एक तरफ और बाकी के पांच एक तरफ, और जीव अजीव की चर्चा भी बहुत चली, बाकी की चार की चर्चा नहीं चलती है। इसलिए हमें आकाश और अनाकाश, धर्म और अधर्म, अधर्म और अनधर्म, काल और अकाल, काल और अकाल तो आ गया पंचाष्टी काल में, तो इस तरह के भेद इसमें उन्होंने बताए। आप इतना तो व्याकरण जानते होंगे कि यदि हमको किसी शब्द को नेगेटिव बनाना है तो आ लगा के बनाते हैं, जैसे ज्ञान फिर अज्ञान बनाते हैं ना। लेकिन यदि वो शुरू में ही आ लगाई हो उसमें तो आकाश में आ ही लगा है, तो उसमें आकाश ऐसे कैसे लगा है, तो वहां हम अन लगा देते हैं, जिसे व्याकरण में नए समास बोलते हैं। तत्पुरुष समास होते हैं तो नए समास, यानी हमें नेगेटिव बनाने के लिए संस्कृत में आ और अन इन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, ख्याल में है ना। क्योंकि आकाश और अनाकाश इनकी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन और इसमें भी बहुत संक्षिप्त में की है, तो ये जो चर्चा अभी तक इस रूप में की, फिर अधिक का स्वरूप बताया। तो जीव अधिक के पे ज्यादा वजन यहां नहीं दिया, क्योंकि और बड़े बड़े ग्रंथ हैं, हम समय सार बीमा सार जीवकांड वगैरह सब पढ़ते हैं, उनमें पढ़ेंगे और आगे बताएंगे भी, लेकिन इनकी चर्चा जो दूसरी जगह नहीं थी वो की, लेकिन वो सरल ही है क्योंकि ये हमारे अप्रयोजन भूत थे। जैसे पुद्गल है, अब हमारा उसे कोई लेना देना नहीं है, वो अलग है, तो हमने उसमें मूर्ति आता ना रूपिणा पुद्गला, है ना, रूप और रंग में क्या अंतर है जानते हो? रूप और रंग, फिर सोचे स्पर्श रस गंध वर्ण, है ना, ये शब्द तो इसमें एक रूप भी आता है। तो वर्ण कहें कि रूप कहें, रंग कहें, क्या कहें उसे? तो अधिकांश लोग दोनों को एक अर्थ में ही प्रयोग कर देते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। वो जो चार भेद है ना, स्पर्श रस गंध और वर्ण, उन चार में एक है वर्ण, और चारों को मिलाते हैं तो उसका नाम हो जाता है रूप। समझे, रूपिण पुद्गला, ये बात ध्यान में थी? तत्वासूत्र में तो आई है, और जगह भी आई है, हैं? अपनी चर्चा में भी आई थी। तो ये तो भी अब ध्यान रखना, रूपिणा पुद्गला कहा तो हम उसको वर्ण वर्ण वाला पद वर्ण वन, इसके बदले में क्या कहा, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, वहां जब वर्ण लगाया तो चारों लगाए, अथवा चारों लगाए तो उसमें रूप नहीं लगा के वर्ण लगाया, और जब चारों को एक शब्द से कहना हुआ तो हमने रूप कहा, पुद्गल को रूपी कहा। तो इसके हमने दो भेद किए, दो रूपी और अमूरी अरूपी, ऐसे भेद करेंगे ना, रूप रूपी माने मूर्ति और अरूपी माने अमूर्ति, तो इस तरह से हमने पुद्गल के भेद किए। तो इस तरह इन्होंने करके अब समझाते समझाते यहां तक आ गए वो कि कहां रहते हैं। इसकी भाषा बड़ी विचित्र है, भाव तो एकदम सरल है। ये इतना ये सारा प्रकरण है, इसको मैं एक पेज में अत्यंत सरल भाषा में लिख सकता हूं कि एक दिन में 5 वर्ष के बच्चे को पढ़ाया जा सकता है और वो बिल्कुल उसे पक्की बात पूरी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन इसमें भाषा बड़ी टेढ़ी है, हैं? तो हमें भी माथा मारना पड़ता है, है ना? जैसे अपन पढ़ते हैं थोड़ा तो आपको अंदाजा लगेगा। गगन लोका लोक में है लोया लोये सुनभो धम्मा धम्मे ही आद दो लोगे शेषे पडुच्च कालो जीवापण पौगला शेषा। आकाश लोकालोक में, धर्म अधर्म जीव पुद्गल और काल लोकाकाश में रहते हैं। ये तो मैंने हिंदी में काफी सरल कर दिया है, यदि इसको प्राकृत से और अपने प्रज्ञानुवाद से भी निकालो तो पसीना छूटता है। इतनी सी बात करे कि पूरा आकाश है वो कहां रहता है, ऐसा फिर किया अपने आकाश कहां रहता है, क्योंकि आकाश से अवगाह, आकाश का काम सबको रहने की जगह देना है, अब आकाश कहां रहता है, तो आकाश आकाश में रहता है। तो ऐसा तर्क देते हैं तो वे कहते हैं जिस नए से मन निश्चय नए से आकाश आकाश में रहता है तो उस नए से तो जीव जीव में रहता है, पुद्गल पुद्गल में रहता है ना। तो उन्होंने कहा कि गगन लोका लोक में, आकाश लोकाकाश और अलोकाकाश में रहता है। अब अलो आकाश जो लोग है वो बड़ी चीज हो और आकाश छोटी चीज हो, वो उनमें आके रहता हो, हैं? बकायदे किराया चुकाता हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो आकाश ही के दो भेद है ना, सीधी सीधी बात है, आकाश दो प्रकार का है, कि जिसमें बाकी के द्रव्य रहते हैं छह ही वो लोकाकाश कहते हैं, और जिसमें अकेला वो होता है जहां उसे आकाश कहते हैं, और जिसमें छह द्रव्य उसे भी आकाश तो कहते हैं, तो दोनों को मिला करके। तो वो कहते हैं कि आकाश कहां रहता है, कि लोकालोक में, कि बाकी के 5 द्रव्य कहां रहते हैं, ये लोक में, और वो लोकालोक में रहता है, तो आकाश में ही सही तरह रहना हो गए ना। मतलब वो जो तथ्य है जो अपन बचपन से जानते हैं उसको ही यहां ये कहा है, कोई नई बात इसमें प्रस्तुत नहीं की है कि गगन लोकालोक में अर लोक धर्मा धर्म से है व्याप्त। अब लोक है धर्मा धर्म से व्याप्त है, है? लोका और लोकालोक आकाश से व्याप्त है, आकाश लोकालोक से व्याप्त है। अब से क्या है, आकाश लोक और अलोक में है क्योंकि वह अच्छे। अब टीका में हरेक बात की एक युक्ति देते हैं, युक्ति समझो तर्क न्याय, न्याय प्रस्तुत करते हैं। न्याय की परिभाषा क्या है जानते हो? हाँ वो तो ठीक हो गया, प्रमाण न्यायात्म को न्याय ऐसा है ना, लेकिन एक ये भी युक्ति को न्याय कहते, समझे ना, कहते हैं युक्ति और आगम से सिद्ध करो, बोलते ना। तो आगम शास्त्र का बता दोगे ये लिखा है यहां पर, सीधी सरल बात है, कहने को तो अत्यंत सरल बात है कि आगम माने शास्त्र में नकल लिखी, बता दोगे ये हो यहां पर लिखी है, लेकिन वो हमें पता होनी चाहिए ना। इतने शास्त्रों का हमें अध्ययन होना चाहिए कि सामने वाला कोई बात पूछे और वो चीज किस शास्त्र में कहां लिखी है, किन शब्दों में लिखी है, हम उन शब्दों को बता सकें और फिर उनका सही अर्थ भी प्रस्तुत कर सकें। इसलिए वो आगम वाली बात कठिन हो जाती है। और युक्ति से, अब युक्ति तो अमृत चंद्राचार्य की जो टीका है हरेक में युक्ति दी है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा ऐसा क्यों है। अब इसमें प्रमाण न्यायात्म को युक्ति भी है, तो वो कहते हैं कि नए बता दो, प्रमाण बता दो, ये प्रमाण का कथन है कि नए का कथन है कि कौन से नए का कथन है। तो जैसे नाचार्य ने वो किया तो वो युक्ति हो जाएगी, और आगम बता दो कि आगम में भी यहां लिखा है, जो अपने प्रसिद्ध आगम है ना, तो उन आगमों से हम प्रस्तुत कर दें। तो बड़ा विद्वान छोटा विद्वान क्या होता है, जो निरंतर जीवन भर अभ्यास करते हैं ना, तो धीरे धीरे उनको आगम का अभ्यास बहुत हो जाता है। अभी अपने दीपक भाई रोजीना प्रवचन करते हैं तो मैं सुनता था, तो बहुत प्रसमानियों के उदाहरण देते हैं, वो सारे कहानी कैसे उन्हें याद हैं, पढ़े हैं, वे शास्त्र हमने भी पढ़े हैं लेकिन हमारा उस पर अवग्रह होकर रह जाता है। ये हमारे धारणा में उपयोग ज्यादा लंबाता नहीं है, क्या हम उस टाइप के उदाहरण नहीं देते जो किसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए जरूरी होते हैं, वे तो देते हैं लेकिन उनका वो ज्ञान विस्तृत है तो वे उसको देते हैं निरंतर। अब हम दो दिन में पढ़कर ऐसे करके नहीं हो सकते, 5 साल का कोर्स करके भी नहीं हो सकते, उसे तो आप निरंतर प्रथमानियों के ग्रंथों का स्वाध्याय करो और उनको उसमें रस लो उन कहानियों में। अपना दिमाग तो उल्टा चलता है कि उस कहानियों में क्या अतार्किकता है, तार्किकता की कमी है। जैसे भी अपने रक्षाबंधन वाली कहानी सुनाते हैं ना आप लोगों को, तो बताते हैं कि अकंपनाचार्य सर्वश्रेष्ठ आचार्य मुनि थे और विष्णु कुमार सबसे भ्रष्ट मुनि थे। अभी सबसे भ्रष्ट कहो तो समाज में जिंदा रहना मुश्किल हो जाए, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन सारा समाज उन्हीं की पूजा करता है, क्योंकि उन्होंने बहुत महान काम किया, क्योंकि उनकी रक्षा की, क्या महान काम किया ना, क्यों एक ध्रुव दूसरे ध्रुव की रक्षा कर ही नहीं सकता, उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकता, जो काम कर ही नहीं सकता वो काम उनने किया, और उसके पीछे अपने छठवें सातवें गुणस्थान की शुद्ध दशा छोड़ दी। और उसके बाद में रस ले लेके सुनाते हैं कि उनने ऐसा कहा, बड़ा शरीर बना लिया, छोटा बना लिया, छोटा के बामनिया बन के मांगा और बड़ा बड़ा बना के लेने लगे, तो सब धोखाधड़ी नहीं है, इसमें रस का ले रहे हो, समझ भर ने झूठ बोल दिया, मुझे यह मैं खा जाता हूं और फिर लेके खुद खा गए और कह रहे भगवान को खिला दिया है? और वो कहां से आया था, बन के बाजार का था कि बिना बाजार का था, घर से बन के आया था, उसने क्या कहां तक की शुद्धि थी ये सभी माताएं बहनें जो इतना शुद्धि का ध्यान रखती खाने पीने में, उनको उसमें कुछ नजर नहीं आता है? उनको तो उनको ये लगना चाहिए बहुत बुरा हुआ, लेकिन मूर्ति तोड़ दी फोड़ दी बहुत अच्छा लगता है, तोड़ फोड़ अच्छी चीज है। अरे चाहे ऐसा पत्थर लेके हाथ से तोड़ी, वो चाहे फूंक के तोड़ी, चाहे मंत्र पढ़ के तोड़ी, तोड़ी तो तोड़ी है ना, अब काम अपराध हुआ है ना, दूसरे लोग नहीं कर सकते जैसे उनने कर दिया, इसलिए वे महान हो गए। इसलिए वो अपनी कहानियों में ज्यादा वैसा स्टार का रस अपना पकता नहीं है, वो मैं अच्छा नहीं है ये नहीं कह रहा हूं। मुझे भी बहुत आनंद आता था, मैं बहुत ध्यान से सुनता था, समझे ना बराबर। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो चीजें हैं सब शास्त्रों में सब चीज हैं, और जिसका आप अभ्यास करोगे वो चीज आपको उपयोग में भी उपस्थित रहेंगी। जब मैंने वो पढ़ता था मनोविज्ञान बीए में, मैंने फिलोसफी ली थी, मनोविज्ञान तो नहीं लिया था, साइकोलॉजी नहीं ली थी, फिलोसफी ली थी, लेकिन उसमें एक पेपर साइकोलॉजी का था, उसमें 10 चैप्टर थे शांति जी, उसमें लर्निंग मतलब सीखना, याद रखना, और ऐसे ऐसे चैप्टर थे अलग अलग, ध्यान करना, ये करना, इस करके। तो उसमें जो मेमोरी का चैप्टर था, माने याद रखने का, तो उसमें लिखा था याद रखने का सबसे बढ़िया उत्तम उपाय क्या है, पहला प्रश्न लिखा था, तो उसमें लिखा था भूलना। क्या तुमने सुन, याद रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, तो सबसे पहला उपाय लिखा था भूलना। आपको अटपटा लगता होगा ना, तो कहते हैं कि अपने दिमाग के कंप्यूटर में लिमिटेड शक्ति है, बहुत है लेकिन बहुत लिमिटेड भी बहुत है, सर्वज्ञता की दृष्टि से तो कितनी लिमिट है ना। जैसे आपका रहता है ना कि कंप्यूटर में कि इतनी 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 ताकत है, इसमें इतना नाम रख सकता, इतनी मेमोरी है, तो ऐसे अपने दिमाग में भी है। तो वो कहते बुरी बातें हम भूलते जाएं तो हमें अच्छी बातें याद रहेंगी। समय साल की गाथाएं याद रखनी है तो दुनिया के गाने बजाने छोड़ने पड़ेंगे, भूलने पड़ेंगे। अब मान लो कि हम बुजुर्ग हो रहे ना धीरे धीरे, तो वो हमारी शक्ति कम हो रही, तो हम आप लोगों के नाम भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं, सामने दुनिया 24 घंटे के साथ रहते हैं उसको ही नाम भूल जाते हैं। अब हम कह के नहीं साहब, कोशिश करें, तो कोशिश करेंगे तो फिर ये समय सार की गाथाएं भूलना पड़ेंगी, भूलना तो पड़ेंगी ना। यानी हमको इतनी शक्ति है और हम इतना हमारी मेमोरी में आ गया है, तो हम जगह खाली नहीं करेंगे तो नया नहीं सीख सकते, तो जगह तो हमें खाली करनी पड़ेगी। तो हम चुनाव करें कि क्या भूलें और क्या याद रखें, और यदि अपन नहीं करेंगे तो क्या होगा। आपके फोन में जो भी मेमोरी होती है, और यदि आप उसको वो नहीं करें, हटा देते हैं ना, क्या बोलते हैं जो भी, तो नहीं करें तो क्या होगा, तो बस वो अपने आप एक क्रम से उसमें से हटते जाएंगे। तुम नए डालोगे, एक डालोगे तो एक वहां से हट जाएगा, तो वो कौन हटेगा। तो कहते अपनी रुचि के अनुसार, जो अपना रुचि वाला होता है वो याद रहता है, और जो अरुचि का विषय होता है वो भूलते जाते हैं। तो उसके तुम्हारे उपाय क्या है कि तुम अपने इसमें समय सार में रुचि रखो, तो तुम्हें ये याद रहेगा, वो भूल जाओगे। अब तुम्हारी उसमें ही रुचि है तो वो भूलोगे नहीं, वो भूलोगे नहीं तो समय सार की गाथा घुसेगी ही नहीं, और घुस भी गई तो भूल जाएगी, क्योंकि तुम्हें उसी रुचि तो है नहीं। माने ऐसा होता है ना,
अब हम तो स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं। अभी आप तो जब हमारी उम्र पे आओगे तब अनुभव होगा ना, है? अभी तो इतना जल्दी हो नहीं जाएगा। यानी वो एक व्यवस्था प्रकृति में भी है। तो आप यदि ये नहीं कहोगे कि क्या बोलना, तो वो कर लेगी निर्णय। और वो निर्णय कर लेगी माने जो आपकी अरुचि का विषय होगी उसे भुला देगी, माने वो भी आपके हित में करेगी निर्णय, आपके अहित में निर्णय करने वाली नहीं है। जो मूल आपके हित की चीजें हैं जिसमें आपकी रुचि है उनको याद रखेगी, और जिनमें रुचि नहीं है उनको भूल जाएगी। तो ऐसे अपने स्वाध्याय करते हैं, कोई भी पुराण पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ें, तो उसमें सब तरह की बातें हैं। हमको एक तरह की याद रहती है, तुमको दूसरी तरह की याद रहती है। उसी में भी बहुत बातें ऐसी हैं ना कि जिनको छोड़ दो जिनको रख लो, हैं? तो वो प्रकृति की एक व्यवस्था है। तो अपन पढ़ रहे थे, पहले से शांति से पढ़ ही लेते हैं, या ये तो पढ़ चुके हैं। वैसे मुझे ये बताया गया है अपन को यहां से पढ़ना है, यद्यपि आचार्य जयसेन है ना, ये पेज नंबर 285 पर है। लेकिन मैंने आपको तो पहली गाथा से ही बताया ना कि क्या विषय है, क्या अपन चल रहे हैं, वहां आ गए हैं। तो इस गाथा की अमृतचंद की टीका भी पढ़ लें, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। धर्म और अधर्म द्रव्य लोक में सर्वत्र हैं, क्योंकि उनके निमित्त से जिनकी गति और स्थिति होती है, ऐसे जीव और पुद्गलों की गति और स्थिति लोक के बाहर नहीं होती है और न लोक के एक प्रदेश में होती है। ये ऊपर की एक लाइन छूट गई। आकाश लोक और अलोक में है, क्योंकि वह छह द्रव्यों के समवाय और असमवाय के बिना विभाग के रहता है। क्या कहते आकाश लोक अलोक में है? क्या कहते हैं कि लोक और अलोक की परिभाषा क्या है? कि जहां छह ही द्रव्य रहे वो लोक, और छह ही द्रव्य नहीं रहे वो अलोक। तो कहते हैं वो आकाश नाम का जो पदार्थ है वो ऐसा भेद नहीं करता, चाहे वहां छह द्रव्य रहते हो चाहे नहीं रहते हो, वो दोनों को एक ही में उसका अवस्थान है, ठीक है, उन दोनों के भेद बिना। कहते भेद नहीं किया, आकाश का कहां रहता है कि आकाश में, बस खत्म। लोकाकाश में और लोकाकाश में माने जिसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं उसमें पूरा आकाश रहता है। माने अभी कहेंगे कि आकाश अखंड है, लोकाकाश और अलोकाकाश एक ही है शुद्ध निश्चय से। और फिर कहेंगे भेद है कि जिसमें छह द्रव्य रहे और जिसमें वो लोक और नहीं रहे। तो ले षड्द्रव्यानि विलोकन्ते सालोका, ऐसा आता ना अपने 12 भावना में भी मैंने लिखा है, एक पंक्ति आती है, किसे याद है बोलो, उसमें देखोगे। अरे मुझे बुढ़े आदमी को याद है तो तुमको देखने की जरूरत है। जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है, आता क्या नहीं? जिसमें छह ही लोक झलके वह आत्मा लोक है, राजवार्त की पंक्ति है। जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। वो हम कहते हैं कि लोकाकाश को भी लोक कहते हैं, और हमारा आत्मा भी लोक है, क्योंकि उसमें छह द्रव्य जिसमें रहे वो लोकाकाश लोक है, और छह ही द्रव्य जिसमें झलके तो वो आत्मा रहना हो गया ना। झलके मनुष्य के ज्ञान में रहते हैं ना, ये रूप से रहते हैं ना, इसलिए उस आत्मा को ही लोक कहते हैं, है ना? हो गया ना समवाय और असमवाय। समवाय माने मिलकर और बिना मिले, कहते दोनों का समवाय माने लोकाकाश और अलोकाकाश को मिला के बात कर लो, और चाहे असमवाय माने बिना मिलाए बात कर लो, लो आकाश दोनों में रहता है। नहीं मिलाओ, मिला के बात करो तो अकेला आकाश कह लो, मिला नहीं मिलाओ तो लोक में और अलोक में रहता है, ऐसा कह लो।
आकाश आकाश में रहता है और आकाश लोक अलोक में रहता है, क्या अंतर है? बस यही है कि एक में मिला के कहा, एक में बिना मिला के कह दिया है? हिंदुस्तान कहां रहता है बोलो? अब ऐसे प्रश्न कोई करे तो क्या कहोगे यार? लोगों ने जवाब दिए है ना, कह दिया हिंदुस्तान गांवों में बसता है, आते थे ना गांधी जी जैसे लोग बोलते थे ना, गांव में रहता मैंने जिस शहर के लोगों को तुम देख रहे हो ना एकदम टॉप, ये हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान वो ओड़ा टेढ़ा साफा लगाए, ये बांधे, ऐसा कंगरखा पहने, हल अपने कंधे पर रखें, ये हिंदुस्तान है। बड़े बड़े अखबारों में उन्हीं के फोटो छपते हैं, ये हिंदुस्तान है। अमेरिका के लोग हिंदुस्तान देखने आते हैं तो ये टिप टॉप हिंदुस्तान देखने नहीं आते, इससे ज्यादा टिप टॉप तो उनके ही यहां है, समझे ना? अमेरिका में कुछ दम नहीं है देखने में, हर गांव एक सा, एक से मकान, एक सी सड़कें, एक सी सड़क, पता ही नहीं लगता है। यहां तक कि एक आदमी ने स्टोर खोले, मान लो कोई भी नाम ले लो उनके, समझे ना, और 100 स्टोर खोले 100 शहरों में, 5000 किलोमीटर दूर एलए में, इधर न्यूयॉर्क में, तो वो अंदर में मान लीजिए पूरे बापूनगर इतने बड़े एरिया में एक स्टोर है, एक दुकान, पूरा बापूनगर आ जाए जिसमें, तो जहां साबन एलए में रखी है इधर बिक्री में, न्यूयॉर्क में भी वहीं रखी मिलेगी, वैसे ही नक्शा होगा अंदर, वैसे ही फर्नीचर होगा, वैसी सीटें होंगी और वैसे ही उसी जगह वो चीज रखी मिलेगी। आप ढूंढने में आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, आप परिचय हो गए उससे स्टोर से तो आप घुसिए सीधे दक्षिण दिशा में चले जाइए, उधर इधर पीछे को जाइए तो वहां मेडिकल की दुकान मिलेगी और वहां पर दवाइयां रखी होंगी, और आपको क्या चाहिए कि फलना दवाई चाहिए, मतलब समझ लीजिएगा हमें ब्रश चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, जो भी नाम वाम आती नहीं मुझे जाना, सोचना पड़ता है, कहने क्या है, कोलगेट चाहिए, तो कोलगेट वहीं रखा मिलेगा जहां एलए में रखा होगा, उसकी पोजीशन वैसी की वैसी होगी। अब आप कहोगे यही तो बहुत बड़ी मैनेजमेंट व्यवस्था है, उसमें कितना श्रम बच जाता है, कितने कम आदमी लगते हैं, फटाफट वो वहां से ला करके आपको एक मिनट में दे देगा, उनको सब याद रहता है कि कहां रखा है, फटाफट। आप न्यूयॉर्क में चीज खरीदिए, पैसा दे दीजिए, फिर 10 दिन बाद आपको पसंद नहीं आए तो वही चीज एलए में 5000 किलोमीटर दूर चले जाइए, उसी स्टोर में वहीं वैसी चीजें रखी होंगी, उसे दे दीजिए कि हमें नहीं चाहिए, पसंद नहीं आई, तो पूरे पैसे वो आपको एक मिनट में दे देगा और आपकी चीज वापस ले लेगा, है ना? बहुत अच्छा सोचा तुमने कभी ऐसा? कहीं हमने भी नहीं बताया है? अब हिंदुस्तान में धीरे धीरे खुलते जा रहे ऐसे। अब मैं ये कह रहा हूं मेरी दृष्टि से कि देखने लायक कुछ नहीं रहा, एक स्टोर देख लिया तो सारा अमेरिका देख लिया। यहां तो जयपुर अलग टाइप का, आगरा बिल्कुल अलग टाइप का, वहां की गलियां अलग टाइप की, उदयपुर की अलग टाइप, हर गांव अलग है। दो गांव की बता दो एक से हो जा नक्शा एक सा हो, दो गांव के नक्शे एक से हैं ऐसा नहीं मिलेगा, और वहां पूरा देश एक सा मिलेगा बोलो। तो हम कहते टूरिस्ट की दृष्टि से क्या रहा? कुछ नहीं रहा, देखने को एक गांव देखा तो सब देख लिए बस। धर्म और अधर्म द्रव्य लोक में सर्वत्र हैं। अब क्या अपन जानते हैं ना लोगों के कितर सुने क्या है सूत्र है ना वो धर्मा धर्म हो हाँ सक में है। अब क्योंकि हेतु दे रहे वो कि उनके निमित्त से जिनकी गति और स्थिति होती है
किनकी होती है? दीव पुद्गलों की। ऐसे दीव पुद्गलों की गति और स्थिति लोक के बाहर नहीं होती, इसलिए लोक उनमें ही होगी जहां भी होंगे, और एक लोक एक प्रदेश में भी नहीं होती। और ये चीज कहीं नहीं मिलेगी। क्या कह रहे एक प्रदेश में नहीं होती है, क्या कह रहे शांति जी? क्योंकि एक प्रदेश में हिलने की गुंजाइश ही नहीं है ना, वो कहां से कहां जाए। एक आता ना, अभी आएगा, कि पुद्गल का एक परमाणु अत्यंत मंद गति से आकाश के एक प्रदेश से उसके नियरेस्ट दूसरे प्रदेश में जाए, उसमें जितना समय लगे उसे एक समय कहते हैं। अभी आएगी 240वीं गाथा, उसमें ये बात लिखी होगी, है ना? तो अभी एक गति एक बगड़ के प्रदेश में जाए, अब प्रदेश ही एक है, तब जाने का सवाल नहीं रहा ना। तो इसलिए कहते हैं गति और स्थिति वाले जो द्रव्य हैं वो लोक के बाहर भी नहीं रहते हैं और एक प्रदेश में भी नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका वो जो स्वभाव है ना, गमन करना और गमन पूर्वक स्थिर होना, वो नहीं बनेगा। ये तर्क दिया है उन्होंने। अब शांति से आप पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। ऐसे अचानक नहीं, एक क्या कह रहे हैं, एक कह रहे हैं, हम जानते तो हम समझ गए, पर इसमें ये नई बात क्या कह रहे हैं? अच्छा, सर्वत्र होती है, काल भी लोक में है, क्योंकि जीव और पुद्गलों के परिणामों के द्वारा काल की समयादि पर्यायें व्यक्त होती हैं। अभी देखो, पांच द्रव्य हैं, उन्हें प्रदेशों से नापते हैं, कहते हैं जीव असंख्यात प्रदेशी है, आकाश अनंत प्रदेशी है, ऐसा बोलते हैं ना अपन, कहते ये प्रदेशी। वो काल को प्रदेश से नहीं नापते हैं, समय से नापते हैं, अनादि अनंत है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो एक ही प्रदेश है, दो है ही नहीं, तो उसमें नापक बनता ही नहीं, काल का समय ही नहीं है, वो हिलता ही नहीं है। तो कहते काल को समय से नापा जाता है, तो आ गया ना उसमें कि आकाश के जितने एरिए को एक पुद्गल का परमाणु घेरे उसे प्रदेश कहते हैं, और फिर एक प्रदेश से वो ही परमाणु दूसरे प्रदेश में चला जाए तो उसे समय कहते हैं। सही बोला मैंने? नहीं बोला, जानबूझ के छोड़ा है कुछ। अत्यंत मंद गति से है ना, क्यों? तो इसमें क्या फर्क पड़ गया? ये फर्क पड़ गया कि वो पुद्गल का परमाणु तो 14 राजू जाता है एक समय में, एक समय में 14 राजू जाता है, तो एक प्रदेश जाए, ये बात कह रहे हैं कि नहीं? तो वो मंद गति, वो तेज गति तो उसकी इतनी तेज है, जीव से दुगनी तेज है। क्यों? कि जीव मध्य लोक से मोक्ष में जाते हैं, सिद्ध सलामे में गोद में जाते हैं, तो यहां से 7 राजू है वो, सिद्ध सला से सीधे निगोद में नीचे नहीं जाते, नीचे से सीधे ऊपर नहीं जाते, और पुद्गल नीचे से एकदम ऊपर जाता है एक समय में। बहुत बातें इसमें बारीक बारीक बातें होती हैं कि 100 देसी पान रखे अपन ने, वहां पान जानते खाते हैं लोग, तो वो कई तरह के होते हैं, मद्रासी, कपूरी, देसी। तो देसी पान जो होता है वो बहुत मोटा होता है और सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है, अनंत निगोदीय जीव रहते हैं उसमें पालक जैसा। तो वे 100 देसी पान रखे, बहुत मुलायम होता है, उसमें अपने बहुत तेजी से लेके एक सुगा ऐसा मारा, तो एक साथ वो 100 के 100 पान छिद गए, और सुगा नीचे निकल के जिस पे वो रखा था ना पट्टा, उसमें घुस गया, एक समय में घुस गया ना। 100-100 जो पान है वो एक ही समय में छेद हो गया ना, क्यों? एक चोट में तो हो गया, कि तुम्हें समय का पता नहीं है। जब वो पहले ऊपर वाले पान में था उसकी नोक, तब नीचे वाले पान में नहीं थी। जब नीचे वाले में थी तब ऊपर वाले में नहीं थी। ऊपर वाले में छुआ का ऊपर वाला हिस्सा आ गया था, और हिस्सा तो है ना, इतना हिस्सा चला गया ना, तो एक समय में नहीं है, वो सब अलग अलग समय में छिदे हैं। 10 पापड़ रख लिए सेक के, और फिर ऐसा जोर से चोट मारो तो एक साथ सब चूर चूर हो जाएंगे ना। तो यदि हम इस उस समय को नहीं पहचानते इसलिए ऐसी बातें करते हैं। उसमें भी वे क्रम से ही टूटते हैं, उनमें चोट भी क्रम से ही लगती है। जब वो चोट यहां लगी तब नीचे वाले पापड़ में नहीं लगी थी, जब तक नीचे वाले में लगी तब ऊपर में नहीं लगी थी। ऐसे ही 14 राजू एक पुद्गल का परमाणु गया, तो वो पुद्गल उसी समय नरक में था और उसी समय देव में गति में था, स्वर्ग में था। समझ में आया कि नहीं आया? क्षेत्र की अपेक्षा मध्य लोक है, तीन लोक में था ना एक समय में, तो अधोलोक में भी था, मध्य लोक में भी था और ऊर्ध लोक में भी था एक ही समय में। अब समय के भी इतने हिस्से हो गए अविभागी, कहते हैं समय किसे कहते हैं जिसके दूसरे हिस्से ना हो, परमाणु किसे दूसरा हिस्सा ना हो, तो इसे अविभागी प्रतिच्छेद बोलते हैं। विभाग तो नहीं हो सकता, फिर भी भाग है, विभाग है। इसमें यह बात विशेष जानना चाहिए कि प्रदेशों का संकोच विस्तार होना जीव का धर्म है, और बंध के हेतुभूत स्निग्ध रूप गुण पुद्गल के धर्म होने से जीव और पुद्गल का समस्त लोक में या उसके एक देश में रहने का नियम नहीं है। काल जीव और पुद्गल एक द्रव्य की अपेक्षा से लोक में एक देश में रहते हैं, और अनेक द्रव्यों की अपेक्षा से अन्यन से भरी हुई दिव्य के न्यायानुसार लोक समस्त लोक में ही है। एक अंजन है आंख में लगाते थे वो डिब्बी में भर दिया। अंजन का उदाहरण क्यों दिया? आचार्य को इतनी और बारीक चीज कोई देखने में नहीं आती थी, तो वो अंजन बहुत जो अपना घी जलाते हैं ना, तो घी जलाने के बाद वो धुआं निकलता है, वो धुआं के ऊपर कोई ऐसी चीज बर्तन लगा देते हैं, तो धुआं जमते जमते उस पर वो जम जाता है काल खान। देख तुमने देखी है तुम लोगों ने उसका, वो बहुत बहुत बारीक होती है, मतलब उससे बारीक कोई चीज नहीं होती है। अब उसमें फिर जो कोई चीज डालते होंगे तो उसे दबा करके और अंजन की डिब्बी में भर दिए, तो उस अंजन की डिब्बी में वो ठसाठस भरा हुआ है ना, कौन काजल क्यों? तो वो कहते हैं वो तो एक कागल का एक जो अणु है वो तो बस अपने उतने ही क्षेत्र में है, वो पूरी डिब्बी में थोड़ी है। लेकिन पूरे काजल की दृष्टि से देखें तो वो पूरे काजल से भरी हुई है, वही डिब्बी काजल से भरी हुई है, और नहीं तो एक दूसरे में नहीं है। ऐसे एक दूसरे से पृथक भी हैं असंख्य प्रदेश, और एक दूसरे से भरे हुए भी हैं। ऐसे ये मतलब ये सब चीजें उसका जो एक है कि अनेक है, अलग अलग है, इकट्ठी हैं, ये सब अनंत जीव एक साथ एक शरीर में रहते हैं निगोदिया में, तो एक साथ है ना, कि बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, अलग अलग भी रहते हैं और एक साथ भी रहते हैं। यद्यपि आचार्य जयसेन, अब ये नया यहां से चलना था अपने को, इतना ही तो ये पुराना अपन पढ़ रहे हैं। यद्यपि आचार्य जयसेन इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीप का टीका के समान ही स्पष्ट करते हैं, तथापि अंत में इसी बात को नयों के माध्यम से स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, नय लगा देते हैं। फिर उसमें भाव यह है कि जिस प्रकार सिद्ध भगवान यद्यपि निश्चय से लोकाकाश प्रमाण अपने शुद्ध असंख्यात प्रदेशों में और केवल ज्ञानादि गुणों के आधारभूत अपने भावों में रहते हैं तथापि व्यवहार से सिद्ध सिला में रहते हैं। कहां रहते हैं सिद्ध भगवान? के सिद्ध सिला में अपन सब बोलते हैं, व्यवहार है। और वे काय रहते हैं? आत्मा के जो असंख्य प्रदेश हैं उनमें रहते हैं। और दूसरा क्या बताया? अनंत जो गुण है उनका भाव है उसमें रहते हैं। विज्ञान रूप है ना, रूप माने वही भाव। अपने रूप में क्या क्या किया था? चार चीजें की थी ना, ऐसे यहां लगा रूप माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव। यहां भी चार मिला शांति जी, तब वो रूप बनता है। इस रूप अपन कहते हैं ये इस रूप है, तो वो मैंने उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव इसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव के समान है, है? हमको याद है सर्वासिद्धि पढ़ते थे तो उसमें वो गुरु जी कहते थे कि भाई आकाश कहां रहता है? स्वात्मनि, अपने में रहता है। तो उसको तो उदाहरण देके हमें समझाते थे वो कि अपन यहां से गए धर्मशाला में ठहरे, उस वक्त होटल मोटल तो थे ही नहीं, थे तो अपन तो जानते भी नहीं थे, कोई ठहरने की किसी की हैसियत भी नहीं थी। तो धर्मशाला में ठहरे तो धर्मशाला में चोरी होने का बहुत डर रहता था, इसलिए सारे रुपया पैसा माल अपनी जेब में रख लिए, कमरे में बांध लिए, और वहां एक थैला मैला जो थोड़ा सा रहता था ना वो कमरे में छोड़ के आए। अब दिन भर तो बाजार में रहना है, धंधा पानी करना है, खरीद बिक्री जो भी करनी है। तो तुम कहां ठहरे? कहां रहते हो? तो धर्मशाला में, ये धर्मशाला में दो रुपए का थैला है तो उसको तुम रहना कहते हो? और तुम पूरे के पूरे अपना शरीर सेहत आत्मा सब कुछ अनंत गुण असंख्य प्रदेश सब यही है, इसको कहते हो तुम मजाक उड़ाते हो? स्वात्मनि के तुम कहां रह रहे? अपने में ठहरे। यदि वो जवाब दे रहे अपने में ठहरे हैं तो उसे पागल कहेंगे, और कहें धर्मशाला में ठहरे हैं तो सही है। बोलो, धर्मशाला में ठहरने की बात कितनी औपचारिक है और अपने में ठहरने की बात कितनी सही है, ऐसा देखें कि स्वात्मनि निश्चय न से प्रत्येक द्रव अपने में ठहरता है, दूसरे में कहीं ठहर सकता ही नहीं है, कहीं रहता ही नहीं है। भगवान हो गए ना लोकाकाश अपने शुद्ध असंख्यात प्रदेशों में और केवल ज्ञानादि गुणों के आधारभूत अपने भावों में रहते हैं तथा भी व्यवहार से सिद्ध सलाह में रहते हैं। उसी प्रकार सभी पदार्थ यद्यपि निश्चय से अपने अपने स्वरूप में रहते हैं तथापि व्यवहार से लोकाकाश में रहते हैं। मन सब जीव अपने अपने स्वरूप में रहते हैं और व्यवहार से लोकाकाश में रहते हैं। जीव अनंत हैं और पुद्गल उनसे भी अनंत गुणे हैं, फिर भी एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों के प्रकाश के समान विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण असंख्यात प्रदेशी एक लोक में भी इन सभी का एक साथ रहना विरोध को प्राप्त नहीं होता। ये जो उदाहरण बोलते हैं ना, उदाहरण दृष्टान्त उदाहरण न्याय में सब आते, परिभाषाएं पढ़ते होंगे आप। तो अब अभी तो अपन क्या समझते हैं कि वो पंडित जी दृष्टांत देते थे, क्या एक कस्सा सुना दिया तो दृष्टांत हो गया, क्यों उदाहरण हो गया वो। हमें चंदे तो एक भी उदाहरण एक किस्सा नहीं सुनाया कहीं किसी का बिल्कुल भी है? और ये सब दृष्टांत भरे पड़े दृष्टांत, जो उनने न्याय शास्त्र ने दृष्टांत की परिभाषा बताई है उदाहरण की, वो तो ये है इसे दृष्टांत बोलते हैं। तुमने कोई एक किस्सा सुना दिया, वो भी घटना चाहिए, तो तुम्हारा वो कहीं घटता ही नहीं है, तो हमने नकली कहानी बनाई रिक्शे वाले की है? लेकिन फिर उसमें एक एक अंग घटाते हुए गए ना अंत तक, घटाना तो चाहिए, बस ये तो कहानी सुना देते हैं। वो घटी कि नहीं घटी, कभी कभी उल्टी घटती है, कभी कभी वो कहानी उल्टी घटित होती है। एक सच्ची घटना है, वो मेरे साथ घटित हुई थी, दादा ने अपनी किताब में भी उसे लिख दिया है। वो अशोकनगर में मैं प्रवचन करता था, तो इंदौर आश्रम के ब्रह्मचारी लोग, चार पांच बड़े बुजुर्ग ब्रह्मचारी जो मेरी दादाजी की उम्र के थे, वो वहां आते थे मेरा प्रवचन सुनने के लिए। चार चार महीना रहते थे। उनका नाम बता रहा हूं, ब्रह्मचारी कुंजीलाल जी, ब्रह्मचारी चांदमल जी, ब्रह्मचारी परशुराम जी, ब्रह्मचारी छोटेलाल जी, ये सब लोग आते थे और चार चार पांच पांच महीना वहां रहते थे। मैं प्रवचन करता था, वे सब सुनते थे। वो बहुत अच्छे स्वाध्यायी लोग थे, कट्टर तेरापंथी, ऐसा नहीं कि वो कुछ समझते नहीं थे। तो वो कभी कभी वो भी करते थे। तो ब्रह्मचारी कुंजीलाल जी वो मेरे दूर से रिश्ते में भी कुछ लगते थे, मानी मेरी चचेरी बहन के ससुर के भाई ऐसे कुछ थे क्या तो वो प्रचंड कर रहे थे, तो मुंशुओं की मजाक उड़ाते थे। तो उनने वो सुनाया कि भाई घर में चोर आए, पति पत्नी दोनों सो रहे थे, तो पत्नी ने पत्नी को पति को कहा कि जो चोर आ गए, तो उसने कहा चुप रहे, जान रहा हूं देख रहा हूं। फिर वो ऐसे कई दफे कहा, उनने तिजोरी खोल ली, चाबी निकाल के पैसा निकाल दिए, सब ले जाने लगे। तो बिल ले जाने लगे तो उन्होंने कहा सब बिल ले जा रहे हैं कि देख रहा हूं जान रहा हूं। तो बोले गए ये मूर्ख लोग ऐसे ही देखते जानते रहेंगे और सब लुट जाएगा, और सब ने तालियां बजाई हंसने लग गए। बिल्कुल सच्ची घटना बनी बनाई है। मेरे से दादाजी की उम्र के थे, वो ही हैं जो उदयपुर आश्रम के अधिष्ठाता थे, अंत में उदयपुर में ही मरे वो। हम लोगों से उनकी बहुत घनी दोस्ती भी थी, क्योंकि तत्चर्चा वे हमसे ही करते थे, हम उनसे ही करते थे, मतलब बहुत घनिष्ठ संबंध भी थे। और नोकझोंक भी बहुत होती थी, नोकझोंक समझते हो। तो मैंने वहीं कहा कि महाराज एक बात मैं बताऊं। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्योंकि वो तो बात करने को तैयार ही थे, सब हंस रहे थे उनके पक्ष में, उन्होंने अपनी बहुत बुरी तरह से हंसी उड़ा दी थी। मैंने कहा महाराज ऐसा है कि उस चोर के हाथ में एक नंगा छुरा था, समझ में आई ना, तो उस पत्नी को उस अपने गहनों के मुंह में वो छुरा नहीं दिखता था, बस पैसा लुटते दिखते थे, और पति को वो छुरा दिखता था। यदि मैंने पहचानता था वो उन चोरों को, यदि मैंने जरा भी हिला और ये ऐसे आभास हो गया कि मैंने इन्हें देख लिया है, तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि देख लिया है तो मुझे पकड़वा देगा। इसलिए वो ऐसा रहना चाहता था कि उनको यही रहे कि सो ही रहे, हमने देखा ही नहीं क्या। तो उसने अपनी जान बचाई, उसने पैसे नहीं लुटाए। ऐसे हम मुमुक्षु लोग बिल्कुल उदास रहकर जगत से अपनी जान बचा लेंगे, अपने आत्मा का कल्याण कर लेंगे, और तुम छुरा को देखते रहना। तो फिर सब लोग हंसने लग गए। सब लोग समझते थे कि ये भले ही कितनी आपस में वो करें छेड़ाखानी, लेकिन ये आपस में मित्र हैं, इसलिए कोई आदमी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता था, आनंद लेते थे, है ना। तो ऐसा दृष्टांत किसे कहते हैं, अब तुम न्यायशास्त्र पढ़ रहे हो, परिभाषा उदाहरण किसे कहते हैं, वो सब बातें हैं। उदाहरण दृष्टांत एक लाइन का होता है, फिर उसे घटाना हो तो सर्वांग घटाओ, फिर घटाने में भले ही वो चाहे वो पूरा एक घंटा लग जाए रिक्शे वाले जैसा, कि फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हुआ, तो उसकी एक एक बात पे उसका एक एक अंग को घटित करते चले जाएं हम। और हम अकेले पूरा ऐसा किस्सा, हमें तो जो किस्सा याद आ गया वही सुना दिया, वही हमारे लिए उदाहरण हो गया। ये तुम पंडित नए नए पंडित जाते हैं तो ऐसी पर्चा तैयार करके ले जाते हैं, रख लेते हैं, तुम्हें पर्चा में क्या लिखा रहता है, बुढ़ी अम्मा का किस्सा सुनाना। बोले उनको ऐसी चीजें रोज होती, अरे कोई सिद्धांत नोट करो,
कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये समझाना है। और फिर बताओ भले ही हम कि इस बात को हम समझ रहे हैं, ज्ञान चारित्र को समझाना है, हम रिक्शे वाले उदाहरण से समझाएंगे कि ऐसा नोट करो तो वो भी चलेगा, लेकिन तुमको तो किस्सा याद आ गया, तो वो किस्सा जाके कहां पड़ रहा है, कभी कभी उल्टा पड़ता है। ये आदमी आधे पागल होते हैं, आधे से ज्यादा आदमी आधे पागल होते हैं। अब आप कहो घबराना नहीं, मैं बताऊंगा तो अभी हाल आपको पता चल जाएगा, विश्वास हो जाएगा। कैसे होते हैं कि भाई अपना तबीयत पूछने गए, तो भाई क्या है कि तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर कहते कैंसर होगा। हाँ अरे साहब कैंसर बहुत बुरी चीज है, हमारी अम्मा जी को हो गई थी, फिर वे मर ही गई, फिर वे बची ही नहीं, उनका हो गया था। वो 10-20 किस्से किस तरह के कैंसर वाले मर गए उस मरीज के सामने सुनाए गए। अरे मूर्ख, इधर तो धैर्य देने की जरूरत है कि नहीं भी कैंसर मैंसर नहीं है, और कैंसर हजारों का ठीक हो जाता है, वो बताना है कि कौन कौन मर गए थे वो बताना है। बोलो करते कि नहीं कहते देख लेना। वो रेल में गई थी, वो लूहन लुट गया था, उसकी जीप लुट गई थी, उसकी लड़की मुसलमान के साथ भग गई उसकी, लड़की देखने गए अपने लड़का के लिए, तो मुसलमान के यहां भग गई थी। वो किस्सा सुनाई देता क्या? उन बेवकूफों को सिर्फ याद आना चाहिए, अब फिर वे उनको तुम 100 दफे रोको रोकेंगे नहीं, वे सुनाए बिना नहीं रहेंगे। इसलिए मैं उन्हें आधा ही कह रहा हूं, मेरी दृष्टि में तो वे पूरे हैं। फिर लोग धीरे धीरे कहते हैं भैया इससे मत कहो, इसे मत ले चलो साथ में, नहीं तो ये काम बिगाड़े बिना नहीं रहेगा। उसी लड़की की बात कर रहे हैं जो तो तोतली तोतली बोलती है, उसके सामने क्या लड़के वाला आया है, कौन सी लड़की की बात है, कैसी बात है? आप सुन लिए ना जो मैं कितने पागल कह रहा हूं। और ऐसे लोग आपको इस जगत में दिखाई देंगे कदम कदम पर, यानी उन्हें उदाहरण देना नहीं आता, इतनी सी बात नहीं आती उन्हें विवेक से कि कहां क्या बात कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। इतना विवेक तो हमें लौकिक दृष्टि से होना ही चाहिए ना, कि हम वो हमें लेके गया है 4 आदमियों को कि हम उसका काम बनाएं हैं, पर हम जाके वहां ऐसी ऐसी बातें करें जिनसे काम बिगड़ जाए हैं? क्या हमारे एक कहने से काम बनेगा या बिगड़ेगा? कैसा हमने हमारे यहां वो पंडित जी आ रहे हैं 8 दिन के लिए प्रवचन करने के लिए, वो ही ना जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, जिन्हें बहुत गुस्सा आता है और बीच में ही प्रवचन में ऐसा कर देते हैं ऐसा कर देते हैं, सुना है उल्टा सीधा कह के उन्हें कुछ याद आना चाहिए बस, उन्हें अपना किस्सा सुनाना है, और इतना जोरदार सुनास लगती है कि वो उन्हें पच नहीं सकता। तुम कितनी कीमत पर उनको डंडा मार के निकालो तो वो बाहर जा जाके खड़े खड़े चिल्ला के सुनाएगा, वो नहीं पच सकती। क्यों? जो उसके पेट में वो नहीं पचता है, बस याद आना चाहिए, है ना? तो है ना, तो हम ऐसे पागल नहीं हों, इसके लिए बता रहा हूं मैं, किसी का नाम तो मैंने लिया नहीं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि उदाहरण किसे कहते हैं, जो सिद्धांत को सिद्ध करे वो उदाहरण है ना, जो समझाने में सहयोग करे वो उदाहरण है ना, जो सिद्धांत हमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है कि नहीं ये समझाना है, वास्तव में ये नहीं समझाना है, हमें ये समझाना है कि कर्ता नहीं है। भाषा हम ऐसी बोलते हैं कि कर्ता है कि नहीं ये समझाना है, क्योंकि हम कॉमन दिखें, हम कॉमन है नहीं, हमें कॉमन होना नहीं है, समझे ना? तुम लोग बार बार प्रतियोगिता करते हो ना, मैंने पहले ये बंद कर दी थी, क्यों कर दी थी? कैसा ऐसा विषय रख देते थे कि जैन धर्म पढ़ने से लाभ है कि नहीं, अब जो पक्ष रख दिया विपक्ष रख दिया,
और फिर दो ही जने बोलते थे तो वो अपना बुद्धि लगा लगा करके इसमें ये नुकसान है इतने नुकसान बता देता था कि वो हमारा विद्यार्थी बीच में छोड़ के भाग जाए। अरे भाई, हमको ये समझाना है कि उसमें कुछ दम नहीं है, यही असली पढ़ाई है, संसार समुद्र से पार करेगी और दो रोटियों की कमी तो कहीं पड़ेगी नहीं, ये समझाना है। हमने वो सर्व तर्क बताए कि वो डॉक्टर जंगल में एक रहेगा तो क्या देखेगा, इंजीनियर जंगल में रहेगा, कितने कितने उदाहरण हमने बना बना के आपको दिए हैं कि आप ये समझाओ क्या कि ये ही सर्वश्रेष्ठ अध्ययन है। आपका ये काम है, हमको रिसर्च नहीं करवानी है तुमसे, इसलिए मैंने कहा शांति जी बंद करो प्रतियोगिता, तुम तो सीधी रखो कि ये ही पढ़ाई सच्ची पढ़ाई है, ये सब्जेक्ट रखो और सबको बोलने दो इसी पे। समझ में आए कि नहीं? कि नहीं, नहीं वो तो सब जानते हैं, मजाक में कह रहा है जी, इसकी मान्यता हमें मजाक में भी नहीं कहलवाना। हम अपने माँ बहन को गाली मजाक में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई मजाक में भी हमारी माँ बहन को गाली देवे ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ में आई ना? हमको वही तर्क सामने लाना है, वही युक्तियां सामने लाना है, वही उदाहरण सामने लाना है। ख्याल में आई तुम्हारी इनके? नहीं, ये सब आपकी भाषण कला का की चीजें हैं। ये घंटा पूरा नहीं करना है, कोई चीज आपके दिमाग में रखी होनी चाहिए कि हमें ये समझाना है, और जब हमारी सभा समाप्त हो और वो हमारा श्रोता उठे तो वो बात 90% श्रोता के चित्त में वो बात स्वीकृत हो जाए तो हम सच्चे सबल वक्ता हैं। हम यहां रिसर्च करने नहीं बैठे हैं, रिसर्च तो करके हम एक विषय के विशेषज्ञ हो गए हैं, अब उस विशेषज्ञता के उस चीज का हमें प्रचार करना है। क्यों आयुर्वेद का आयुर्वेदाचार्य हो जाए और आयुर्वेद की कमियां हर मरीज को ये बताए, कुछ नहीं तो अंग्रेजी दवाई ले लें, नहीं तो मरते करते रहेगा, महीना खाता रहे, कुछ होने वाला नहीं है, इस चूरन से क्या होना, ये समझा आयुर्वेदी ना। क्यों और वो डॉक्टर वाले के समझा कि इंजेक्शन से क्या होता है, तो हर बहिरा हो लगा चलेगा नहीं चलेगा ना। माने उसको अपने पक्ष में ही उसे अपनी बात रखना चाहिए। आपने बहुत बुद्धिपूर्वक सोच समझकर ये विषय चुना है और चुनकर आपने उसमें अपना जीवन खपा दिया है, तो अब आपके दिमाग में ऐसे भी तर्क हो सकते हैं जो इसके विरुद्ध हों, लेकिन वो तर्क को वजन नहीं देना है, उनको नहीं रखना है, उनको प्रस्तुत नहीं करना है। हमको बड़ा विशाल निर्णय करने हम नहीं बैठे हैं, हम तो अपनी चीज को जगत के सामने प्रस्तुत करने बैठे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, जो भी अपने सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को हम प्रतिपादन करने बैठे हैं।